कुंदाचार्य भगवान का अष्टपाहुड नामक जो शास्त्र है उसके हम दर्शन पाहुड़ की गाथा देख रहे हैं। ये गाथा मेरे हिसाब से तीसरी चल रही है ना। तीसरी गाथा में आओ हम पेज नंबर 83 पर आए हैं। देखो यहाँ पर बात ये हो रही है कि जो दर्शन से भ्रष्ट है वे भ्रष्ट ही है और उनको निर्वाण कभी नहीं होगा भ्रष्ट अवस्था में, और जो चारित्र से भ्रष्ट है वे सिद्ध हो सकेंगे। अभी यहाँ जब ऐसा कहने में आता है कि दर्शन से भ्रष्ट है तो हमारा पहला इम्प्रेशन ऐसा हो जाता है कि ये सम्यक दर्शन से जो गिर गए हैं, लेकिन यहाँ आचार्य भगवान हमें ऐसा समझाना चाहते हैं कि जिन्होंने आज तक सम्यक दर्शन प्राप्त ही नहीं किया है वो दर्शन से भ्रष्ट है। देखो शब्द तो एक ही है लेकिन आचार्य का जो हृदगत है, उनके जो अभिप्राय है, उस अभिप्राय को हमें समझना है और उस बात को यहाँ जयचंद जी छाबड़ा ने उसको खोला है। क्या कहते हैं ये देखते हुए हम पेज नंबर 83 पर आखिर के दूसरे पैराग्राफ में आए हैं। जो जिनमत की श्रद्धा से भ्रष्ट होकर राग से धर्म मानता मनवाता हो, वस्त्र सहित मुनिपना मनवाता हो, उसे भ्रष्ट कहते हैं। वह जीव श्रद्धा से भ्रष्ट है, श्वेतांबरादिक तो श्रद्धा से भ्रष्ट है, और जिनको यथार्थ मार्ग की श्रद्धा है, यथार्थ दिगंबर मार्ग की प्रतीति है, ऐसे जीव को कदाचित चारित्र दशा न हो, चारित्र से भ्रष्ट हो तो भी उसे जिनमत से भ्रष्ट नहीं कहा है। वह मोक्ष मार्ग का आराधक है क्योंकि वह श्रद्धा की दृढ़ता के जोर से अल्पकाल में चारित्र प्रकट करके मोक्ष प्राप्त करेगा। देखो ये जब पूरा वाक्य, ये पैराग्राफ जब हम पढ़ते हैं तो ये सारे वो तीसरे नंबर की गाथा का निचोड़ यहाँ स्वामी जी ने हमको समझाया। क्या कहा? देखो कल ये जब हमने पढ़ा था तब एक व्यक्ति हमारे से बात करते हैं, अपने यहाँ के आने वाले, अरे देखो यहाँ तो श्वेतांबर मत को तो जैन मत बोला ही नहीं है और ऐसे कई लोग हैं कि जो अभी भी उस मत में अटके हुए हैं, तो ये तो हमारी खुश नसीबी है कि हमको इस मार्ग का पता लगा। कैसे जीव को आनंद होता है जो सत्य बात ख्याल में आ जाए। जिसने स्वभाव आत्मा के स्वभाव में से पूर्ण निर्दोषता प्रकट की है, यानी क्या कहा, पूर्ण निर्दोषता कब प्रकट होती है प्रतिबताएं, 12वें गुणस्थान में, बहुत अच्छा, और दोष को जीत लिया है, ऐसे जिन देव है, यानी वो तो अभी जिन देव कब होंगे, 13वें गुणस्थान में, वैसी पूर्ण निर्दोष दशा वाले साधक वह मुनि है और उस पूर्ण दशा पाने के यथार्थ उपाय की श्रद्धा करके जिसने मिथ्यात्व को जीत लिया है ऐसा समकिति है वह वास्तव में जैन है। जिसको आत्मा की श्रद्धा नहीं बाहर में भी मार्ग को मुनि दशा आदि को विपरीत मानता मनवाता है वह तो जिनमत से भ्रष्ट है। कोई समकीति जीव मुनि दशा ले किंतु जाने कि मुझसे मुनि दशा का चारित्र नहीं पल सकता है अर्थात चारित्र भ्रष्ट हो जाए किंतु अंदर में मार्ग की श्रद्धा बराबर रखे शुद्धात्मा की प्रतीति न त्यागे तो वह जीव चारित्र से भ्रष्ट होने पर भी दर्शन का आराधक है और अल्पकाल में फिर से चारित्र प्रकट करके मोक्ष को साधेगा। यानी यहाँ चौथे गुणस्थानवर्ती पांचवें गुणस्थानवर्ती जीव की बात ली है। श्वेतांबर चारित्र से तो भ्रष्ट हुए ही और वस्त्रादि रखकर उसे ही मुनिपना मान लिया इस कारण वे दर्शन से भी भ्रष्ट हो गए जैन दर्शन की श्रद्धा से भी भ्रष्ट है अर्थात उन्हें तो निर्वाण की प्राप्ति होती ही नहीं। दर्शन सम्यक दर्शन मूल है जड़ है जड़ सुरक्षित है तो वृक्ष उगने में समय नहीं लगता।
देखो पढ़ते हैं यहाँ पर किंतु जिसका मूल ही खोटा हो उसके वृक्ष कैसे उगेगा। वैसे ही जिस जीव की श्रद्धा सच्ची होगी वह तो अल्पकाल में मार्ग को साध कर मुक्ति पाएगा यानी उसके तो चारित्र दशा प्रकट होने ही वाली है किंतु जिसकी श्रद्धा ही विपरीत है उसकी मुक्ति दुर्लभ है यानी अशक्य है। वह तो संसार में ही भ्रमेगा। गाथा में कहा है कि दंशन भट्टा भट्टा जो सम्यक दर्शन से भ्रष्ट है वह ही भ्रष्ट है उसको निर्वाण नहीं होता। हो यह जैन मार्ग तो अनादि सनातन परंपरा से चला आया है यानी अनादि से ही यह चला आया है ये तो मूल परंपरा है। जैसे द्रव्य स्वभाव सनातन स्वयं सिद्ध द्रव्य स्वभाव को किसी ने नहीं बनाया है वो भी अनादि से ही है और है अनादि अनंत है। वैसे ही जगत में जैन मार्ग नया नहीं है किंतु अनादि अनंत ये अनंत हुआ है अनंत सनातन है। यही एक सत्य मार्ग है जो ऐसे मार्ग की परंपरा से भ्रष्ट होकर विपरीत मार्ग का पोषण करते हैं वे जीव दर्शन से भ्रष्ट हैं।
देखो यहाँ पर कितनी क्लियर बात बताई है कि ये जैन दर्शन जो है वो अनादि काल से है और अनंत काल तक टिकने वाला है। लेकिन कुछ जैन ऐसे भी हैं कि वो ऐसा मानते हैं ये जैन धर्म जो है या जैन दर्शन जो है दर्शन का जैन धर्म ये हिंदू धर्म से पैदा हुआ है और उस पे थीसिस लिखकर पीएचडी प्राप्त करते हैं। क्या बोलना बोलो अभी वो कैसे भ्रष्ट है क्या भ्रष्टों में भ्रष्ट है।
हाँ। आगे का पैराग्राफ अंतर स्वभाव की अकषायी दृष्टि और अकषायी परिणति सहित बाहर में अपरिग्रह दशा हो ऐसी मुनि दशाएं क्या कहते हैं। स्वभाव तो अकषाय है ही स्वभाव की जो दृष्टि है और वो स्वभाव की दृष्टि करने पर जो परिणति उत्पन्न होती है वह भी अकषाय यानी वीतरागी है और ऐसे वीतरागी परिणति सहित बाहर में जो अपरिग्रह दशा है ऐसी मुनि दशा है। कदाचित ऐसी मुनि दशा से भ्रष्ट हो किंतु अंतर में मार्ग की यथार्थ प्रतीति रखता हो तो वह दर्शन से भ्रष्ट नहीं है। वह तो अल्पकाल में फिर से चारित्र साध कर मुक्ति पाएगा यानी एक बार छूट भी जाता है फिर भी दोबारा वो प्राप्त कर लेता है। ये बात यहाँ ली इस पैराग्राफ में जिसे सम्यक दर्शन तो निर्मल है परंतु कदाचित चारित्र से भ्रष्ट है, तथापि चारित्र के स्वरूप की यथार्थ श्रद्धा है, यानी सम्यक दर्शन है, अभी चारित्र उसके प्राप्त नहीं हुआ है परंतु चारित्र का स्वरूप उसका निर्णय उसको बराबर है, ऐसा जीव, तथापि चारित्र के स्वरूप की यथार्थ श्रद्धा है अर्थात फिर से अल्पकाल में चारित्र प्रकट करके मोक्ष पाएगा, अकेले सम्यक दर्शन से भी मुक्ति नहीं, बस सम्यक दर्शन हुआ अभी मुनिपद की क्या जरूरत है, कभी मुक्त नहीं हो सकता वो, किंतु सम्यक दर्शन के उपरांत वह जीव सम्यक चारित्र प्रकट करके मुक्ति पाएगा, यानी बस स्वभाव को पहचान तो लिया है परंतु केवल पहचानने से नहीं चलेगा, स्वभाव में जो स्थिरता है एकाग्रता है और उससे जो वितरागता की वृद्धि हुए बिना, यानी चारित्र दशा प्रकट हुए बिना उसके मुक्ति कभी नहीं होगी।
देखो यहाँ केवल 3.5 लाइन में पूरा मोक्ष मार्ग को समझाया है, पहले में पहले तो इस जीव को खतरे से बचाया है, कहते हैं सम्यक दर्शन तो निर्मल है परंतु कदाचित चारित्र से भ्रष्ट है, यानी कोई सम्यक दर्शन प्राप्त करे वह तो निश्चित रूप से निर्मल है ही, लेकिन ऐसा जो अगर चारित्र में नहीं टिका है तो लेकिन उसकी क्या खूबी है, ये चारित्र का जो स्वरूप है उसके वह यथार्थ मान्यता रखे हुए कि इसी को चारित्र कहते हैं, बाह्य आचरण को रागादि को चारित्र नहीं कहते हैं, अंतरंग में जो यथार्थ स्थिरता है उसी को चारित्र कहते हैं, ऐसी श्रद्धा उनकी है, कल में आया तो कह रहे हैं कि वो अल्पकाल में चारित्र प्रकट करके मोक्ष पाएगा, और आगे क्या कहते हैं, अकेले सम्यक दर्शन से मुक्ति नहीं है। लोग पूछते हैं भाई हमें तो सम्यक दर्शन हो गया है, अभी आगे का मार्ग हमें आप बताओ, कि अमेरिका में ऐसी बात हुई हो तो क्यों भाई सम्यक दर्शन क्यों, आप इतना पति पत्नी दोनों, पत्नी कहे कि सम्यक दर्शन होने के बाद क्या आपको हुआ है क्या, नहीं तो किसको किसकी बात कर रहे हो, वो बोलने को तैयार नहीं, वो ऐसा कहती होगी, अभी मैं ऐसा मानता हूँ कि उसके पति को सम्यक दर्शन हुआ ऐसा वो कहता होगा बार बार, और फिर कुछ झगड़ा करता होगा, जो कुछ उनके घर में चलता होगा बेबनाव बनता होगा, तो सम्यक दर्शन होने के बाद वो कैसा बिहेव करेगा, तभी बोलो जिसको सम्यक दर्शन हो गया है, जिसको अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव हो गया है, उसको अभी आगे क्या करना है ये बताना पड़ेगा क्या, तो यहाँ देखो कितनी सीधी बात बताई है, अकेले सम्यक दर्शन से मुक्ति नहीं है, सम्यक दर्शन से भी ऐसा लिखा, किंतु सम्यक दर्शन के उपरांत क्या करना, के सम्यक चारित्र प्रकट करके, ये वाक्य पढ़कर लोग ऐसा मानते कि चौथे गुणस्थान वाले को सम्यक चारित्र नहीं है, अरे भाई यहाँ सम्यक चारित्र प्रकट करके की बात क्या है, कि जो मुनि योग्य अंतरंग में जो स्थिरता है वो प्रकट किए बिना, और जब वो स्वरूप में एकाग्रता होगा सातिशय अप्रमत्ता अवस्था प्राप्त करेगा तो ही आगे श्रेणी चढ़ सकेगा, ये बात बताने की आवश्यकता नहीं है भाई, हमें पढ़ पढ़ कर उसको रटना पड़ता है क्योंकि हमें आत्मा का अनुभव नहीं, लेकिन जिसे आत्मा का अनुभव हुआ है उसको किस बात का समझाना है, वो तो समझ चुका है भाई। हाँ, जो जीव चारित्र का स्वरूप ही विपरीत मानता है, वस्त्र सहित होने पर भी मुनिपना मानता है, उस जीव की तो श्रद्धा विपरीत श्रद्धा ही विपरीत है, वह तो जैन मार्ग से ही भ्रष्ट है, उसकी मुक्ति नहीं होती। अहो, जैन दर्शन तो अत्यंत पवित्र है, दृष्टि भी पवित्र और चारित्र भी पवित्र, ये दृष्टि यानी देखना उसका पवित्र है ना, हाँ क्या बोलते हैं, श्रद्धा भी पवित्र है, यानी यथार्थ श्रद्धा है और यथार्थ चारित्र है, वस्त्र के एक तार का भी जहाँ परिग्रह नहीं। वस्त्र का तार यानी क्या बिन? धागा, गुजराती में तार शब्द है,
धागा, धागा।
ये तार तो तांबे की या कोई मेटल की होती है, अभी इनका क्या ट्रांसलेशन है ये? हाँ, वो गुजराती में जिसको ये तार बताया ना, ये कुछ क्या मालूम। वस्त्र का एक धागा का भी जहाँ परिग्रह नहीं है, अंतर में अणुमात्र भी अणुमात्र राग की भी पकड़ नहीं है, ऐसी अंतर की निर्मल दृष्टि पूर्वक निर्मल परिणति हुई हो, वह मुनिपना है। अहो, ऐसे मार्ग को विपरीत मनवावे, वह तो महाविपरीत दृष्टि है। ये बार बार स्वामी जी वस्त्र के धागे की बात कर रहे हैं ना, क्योंकि उनके पूर्व आयुष्य में जो मतलब पहले जो ये संप्रदाय से जो बाहर निकले, वहां तो वस्त्र सहित ही मुनिपना मानते थे और वो उन्हीं के ऊपर अधिक प्रहार करते थे, क्योंकि वो जब वहां से निकले आए तो बहुत सारे लोग उनके साथ तो यहाँ आए हैं और वो उनका क्या चल रहा है देखे तो सही करके वहां जाके आने वाले लोग वहीं के तो आएंगे, और बाद में जिनका भाग्य खुल गया ऐसे हमारे जैसे मूल दिगंबर भी वहां गए और सत्य मार्ग को समझने को शुरू हुआ। इसलिए बार बार देखो उनका तो पॉइंटिंग जो पॉइंट है ना, वह तो वस्त्र के धागा वस्त्र सहित मने मनवावे वगैरह वगैरह। अभी आगे देखो भाई, यह जैन मार्ग अलौकिक है, इसकी वास्तविक पहचान करनी चाहिए, परीक्षा करके पहचानना चाहिए। जगत में जहां तहां सभी स्थानों पर जाकर सिर झुकाना, यह तो मूढ़ता है, वह वास्तविक जैन मार्ग से विपरीत है। कोई वे कोई वंदनीय नहीं है। यहाँ तो कहते हैं कि भाई तू श्रद्धा सही रखना, श्रद्धा में विपरीतता मत करना, चारित्र का पालन न कर सके तो उसकी भावना रखना, किंतु विपरीत मार्ग मानना नहीं। अभी इसका हम स्वैराचार करें, स्वैर अर्थ निकाले तो हम ही खतरे में जाएंगे। क्या कह रहे देखो, चारित्र का पालन न कर सके तो उसकी भावना तो रखना। सब हमें उपवास तो करना है, लेकिन हम केवल भावना करते हैं हमको उपवास करना है, उपवास करना, ऐसा नहीं चलेगा। क्या ये लोग तो बिल्कुल ऐसा कोई शब्द मिल जावे ना तो उसी के मुंडी पकड़ लेते हैं। पर यहाँ तो कहते हैं श्रद्धा जो है वो जैसा चारित्र है वैसा पक्का श्रद्धा में तो रख, उसको भावना रखना कहते हैं। क्योंकि विपरीत मार्ग मानना वाली बात आ गई ना, कोई जीव छठे सातवें गुणस्थान में हो और कदाचित अस्थिरता हो जाए, चारित्र दशा में न टिक सके और भ्रष्ट हो जाए, किंतु मार्ग की श्रद्धा बराबर टिकाए रखे कि अरे चारित्र दशा मुझे नहीं किंतु अंदर में सम्यक दर्शन है, तो वह जीव मार्ग से भ्रष्ट नहीं है, वह पुनः चारित्र प्रकट करके मोक्ष प्राप्त करेगा। दूसरा प्रकार ऐसा भी है कि कोई जीव समकीति है और उसको मुनिपने की भावना हुई, दिगंबर मुनि दशा कुत्तो धारण की, 28 मूलगुण 5 महाव्रत पालता है, किंतु अंदर में मुनि दशा की योग्य स्थिरता नहीं होती, छठवां सातवां गुणस्थान नहीं आता है, तो वहां बाहर की क्रिया ऐसी रखकर अंदर श्रद्धा रखता है कि मुझे वास्तविक मुनि दशा नहीं है। देखो कितना क्लियर दिया कि नहीं, कोई समकीति है, अब समकीति यानी चौथा पांचवा जो भी हो, दिगंबर मुनि दशा तो धारण की, 28 मूलगुण 5 महाव्रत पाले, किंतु अंदर में मुनि दशा की योग्य स्थिरता नहीं होती, छठवां सातवां गुणस्थान भी नहीं, तो वहां बाहर ऐसी क्रिया रखकर अंदर श्रद्धान रखता है कि मुझे वास्तविक मुनि दशा नहीं है, मुनि जितनी स्थिरता हुई नहीं है, तो वह जीव सम्यक दर्शन टिकाए रखता है, उसे भी अल्पकाल में चारित्र दशा प्रकट होकर मुक्ति हो जाएगी। मैं तो सच कहता हूँ, यानी कभी ऐसा झूठ तो नहीं बोलता हूँ, लेकिन पक्का याद है कि ये जो बाहुबली कुंभोज में समंतभद्र मुनिराज थे, वे हमेशा कहते थे कि हम कहाँ मुनिराज हैं, हमने तो इतना परिग्रह लगा के रखा है। लेकिन बाकी उनका बाह्य आचरण भी बहुत अच्छा था।
परिग्रह ने कौन सा वो भी बताओ। हाँ।
परिग्रह यानी वो वहाँ गुरुकुल चलाते थे,
यानी वहाँ गुरुकुल वगैरह उन्होंने शुरू में स्टार्ट किया था और वहीं पर वो
अभी 1000 से ऊपर विद्यार्थी हैं वहाँ पर। यानी वो सब उनका जब ऐसा था कि वो रहे तो सब बच्चे बहुत अच्छी तरह से रहते थे, अभी भी रहते होंगे, हम गए नहीं है।
उसकी व्यवस्था करने वाले सारे अन्य थे, परंतु वो सारा उन्होंने स्टार्ट किया था, तो ये कहते थे हम सच्चे मुनि नहीं है।
उन्होंने ही कारंजा में गुरुकुल स्थापन किया, वहाँ से यहाँ आए।
वो तीन जगह है, वेरुल का भी उनका ही है।
और कौन से है ना?
एलोरा का, कारंजा का,
एलोरा,
और कुंभोज का,
और एक और नया कुंभोज, और एक है
शेडवाल का, उनका नहीं है।
चलो ठीक है, तीन तो अपने को पक्के मालूम है। हमें ये कहना है कि ऐसे काल में भी ऐसी सिंसियरिटी, वो कहते थे हम मुनि हैं नहीं, खत भी लिखते थे। मेरे पिताजी को तो हर बार उनका खत आता था, और सब शास्त्र की बात है, ऐसे कोई इधर उधर की नहीं।
और उन्होंने स्वाध्याय का ये बहुत शुरू किया, पूरे महाराष्ट्र में जो स्वाध्याय बढ़ाया इतने अधिक जोर से, उनका पूरा श्रेय उनको है। ये एन उपाधे वगैरह जो है ना जैनिज्म के, वो ये धवला आदि के भी जिन्होंने खास टीकाएं वगैरह की है, बहुत अत्यंत विद्वान, उनका पहले विद्यार्थियों में से, पहले तीन विद्यार्थियों में से उन्होंने बहुतों को पढ़ाया भी स्वयं, और स्वाध्याय की प्रेरणा हमेशा देते रहे। हमें भी उन्होंने बताया था, मुझे तो बताया था, कहीं भी पढ़ो, एसटी में पढ़ो, ट्रेन में पढ़ो, दवाखाने में पढ़ो, जो पाप लगना है मुझे लगने दो, मगर ग्रंथों का अभ्यास करो, स्वाध्याय करो। यानी ये तो पहले की बात, कांजी स्वामी के संसार में बाद में आए हम, 72 या उसके भी पहले की बात है ये।
मुझे फोटो निकालने के लिए बुलाते थे, और स्वयं हर मंदिर में, क्योंकि वहाँ हिंदुओं का बहुत अपने ऊपर अटैक होता था, वो अपना ही क्लेम करते थे हमारा ही है, हमारा ही है। उसके बहाने उन्होंने काफी फोटोज मेरे से खिंचवाए थे, और बहुत साल तक वो फोटो भी बेचते थे वहाँ पर, मतलब कॉपीज बनवा के लेते थे हमसे, तब वे ऐसा करते। कहाँ कहाँ दूर दूर जाके, वहाँ जहाँ उनके जो कुछ बिलोंगिंग्स होंगे ऊपर पहाड़ पर, वहाँ मंदिरों में जा जाकर। ये जो कह रहे हैं कि अंदर श्रद्धा है कि मैं उस योग्य नहीं हूँ, वो हमने तो मूर्तिमंत तो देखा है। तीसरा प्रकार, किसी जीव को गृहस्थ अवस्था में सम्यक दर्शन हुआ, आत्मा के अनुभव पूर्वक निर्विकल प्रतीत तो हुई, यथार्थ जैन मार्ग मुनि दशा चारित्र दशा आदि की यथार्थ प्रतीति हुई, किंतु अभी चारित्र दशा नहीं, मुनि दशा नहीं, तथापि वह आराधक है, वह अल्पकाल में चारित्र प्रकट करके मोक्ष पाएगा। इस प्रकार ये तीन प्रकार कहे गए हैं। ये पहला जो है ना, कोई जो छठे सातवें गुणस्थान, वो पहला, ये अभी दूसरा प्रकार नीचे उसके पैराग्राफ है वो, और ये तीसरा प्रकार यहाँ। यानी ये तो अभी केवल सम्यक दृष्टि है, लेकिन उसने मुनि अवस्था नहीं ली। दूसरा वाला जो है वह सम्यक दृष्टि है, मुनि अवस्था बाह्य में ली है, लेकिन अंदर से उनके ऐसी भावना है कि हम सही मुनि अवस्था तक पहुंचे नहीं है, पहुंचेंगे। तो कह रहे, देखो तीसरा प्रकार फिर से पढ़ता हूं, लास्ट पैराग्राफ। किसी जीव को गृहस्थ अवस्था में सम्यक दर्शन हुआ, आत्मा के अनुभव पूर्वक निर्विकल प्रतीति तो हुई, यथार्थ जैन मार्ग यानी मुनि दशा चारित्र दशा आदि की यथार्थ प्रतीति हुई, किंतु अभी चारित्र दशा नहीं, मुनि दशा नहीं, तथापि वह आराधक है, वह अल्पकाल में चारित्र प्रकट करके मोक्ष पाएगा। इस प्रकार ये तीन प्रकार कहे गए हैं, तीनों प्रकार के शुद्ध जीव शुद्ध सम्यक दर्शन की दृढ़ता रखते हैं, अतः वे भ्रष्ट नहीं है। मिथ्या दृष्टि जीव तो मार्ग से ही भ्रष्ट है। जिसको यथार्थ दिगंबर जैन दर्शन की प्रतीति भी नहीं है, वह वस्त्रादि सहित चारित्र दशा यानी मुनि दशा मानता है, उसको तो चारित्र दशा की भी खबर नहीं है। वह चारित्र का प्रयत्न ही कैसा कहां से करेगा। अभी श्रद्धा ही विपरीत है। विपरीत श्रद्धा अनंत संसार का मूल है। वह भले बाहर में त्यागी हो जाए, पंच महाव्रत पाले, नवे ग्रह तक जाए, तथापि उसके संसार का मूल सुरक्षित है। उसके कषाय की मंदता होने पर भी अंदर कषाय का मूल फल फूल रहा है, अर्थात उसमें से फिर तीव्र कषाय फूटेगी और फिर कषाय की तीव्रता से नरकादि में रखड़ेगा, क्योंकि उसने संसार का मूल तोड़ा नहीं है। समकीति के संसार का मूल छिद गया है और मोक्ष का मूल उग गया है। अल्पकाल में वह मूल फल कर चारित्र एवं मोक्ष दशा हो जाएगी। इस प्रकार धर्मरूपी वृक्ष का मूल दर्शन जानना। इस प्रकार यहाँ तीसरी गाथा संपूर्ण हुई। अब जो दर्शन से
सम्यक दर्शन से
जो सम्यक दर्शन से भ्रष्ट है और शास्त्रों को अनेक प्रकार से जानते हैं तथापि संसार में भटकते हैं, ऐसे ज्ञान से भी दर्शन को अधिक कहते हैं।
हाँ, गाथा पढ़ेंगे?
हाँ जरूर।
सम्मतरयण भट्टा जानन्ता बहुव्याहि तत्थायिं आराहणा विरिया बमन्ति तत्थेव तत्थेव। सम्यक्त्वरत्न भ्रष्टा जानन्तो बहुविधानि शास्त्राणि आराधना विरहिता ब्रह्मन्ति तत्रैव तत्रैव। जो जानते हो
सम परभ्रष्ट हो सम्यक्त्व से
भूमे सदा संसार में आराधना से रहित वे। क्या करते हैं? जो सम्यक रूपी रत्न से भ्रष्ट हुए हैं, वे बहुविधान यानी अनेक प्रकार के और अनेक शास्त्र जानकर भी जो आराधना से विरहित है, वो भ्रमंति तत्रैव तत्रैव यानी वो वहीं वहीं पर घूमते हैं, संसार में ही परिभ्रमण करते रहते हैं। हमने जो पांच प्रकार के परिभ्रमण देखे हैं, वैसे वो संसार में ही उनका परिभ्रमण चलता रहता है। अर्थ, ये दो बार अर्थ लिखने, अर्थ पुरुष, जो पुरुष चाहिए,
बराबर है।
अर्थ के बाद अर्थ फिर दोबारा लिया।
ओहो, अच्छा अच्छा अच्छा।
अर्थ के बदले जो चाहिए, जो पुरुष रूबी रस्व चाहिए। जो पुरुष सम्यक रूप रत्न से भ्रष्ट है यानी उन्होंने सम्यक रूपी रत्न प्राप्त ही नहीं किया है, ऐसा भी लेना। तथा अनेक प्रकार के शास्त्रों को जानते हैं तथापि वह आराधना से रहित होते हुए संसार में ही भ्रमण करते हैं, यानी वो समय आराधना कितनी होती है, कौन कौन सी? हाँ, ज्ञान आराधना, दर्शन आराधना, चारित्र आराधना और तप आराधना। तो उससे उनके नहीं होती, इतनी बात है। यानी उनको समय दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति नहीं हुई है, इसलिए कहते आराधना से रहित है। फिर पढ़ते हैं, वो आराधना से रहित होते हुए संसार में ही भ्रमण करते हैं। दो बार कहकर बहुत परिभ्रमण बतलाया है। ये तो पद्धति है, कर्णान योग में भी दो बार बताए तो असंख्यात बार या अनंत बार, वहां जो जहां योग्य है वैसे, यानी उसका अर्थ होता है अनेक बार, भावार्थ। जो जिनमत की श्रद्धा से भ्रष्ट है, और शब्द न्याय छंद अलंकार आदि अनेक प्रकार के शास्त्रों को जानते हैं। अनेक प्रकार लिए ना, मात्र अनेक शास्त्र नहीं कहा, अनेक प्रकार के शास्त्र, अन्य अन्य विषयों के बहुत ज्ञानी है। हमने कल परसों बात आई थी ना, एक कोई डिग्री हासिल करता है साइंस वाली, फिर वो तो लॉ की डिग्री करेगा, मेडिकल की डिग्री हासिल करेगा, एक के बाद बहुत सारे शास्त्रों को पढ़ा है। यहाँ तो अन्य ये साहित्य के बारे में लिए, शब्द शास्त्र, न्याय शास्त्र, छंद शास्त्र, अलंकार शास्त्र आदि अनेक प्रकार के शास्त्रों को जानते हैं। तथापि, ये तथापि हुआ है, तथापि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तपरूप, चारित्र के बाद कौमा, तपरूप आराधना उनके नहीं होती, इसलिए कुमरण से चतुर्गति रूप संसार में ही भ्रमण करते हैं, मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाते। ये कुमरण किसको, हमने तो नमोकार मंत्र का नाम लेते लेते मर गए तो इन्हें अच्छा मरण किया, वो बात नहीं है। पुण्य रूप परिणामों में या शुभ लेशाओं में मरण हुआ तो भी क्या हुआ, जब तक मिथ्यात्व नहीं चला जाता है तब तक तो उसके चतुर्गति में भ्रमण चलता ही रहता है। इसलिए सम्यक्त्व रहित ज्ञान को आराधना नाम नहीं देते, ये बात यहाँ मुख्य बता रहे हैं। किसका
भ्रष्ट,
भ्रष्ट में दो बातें होती है, एक जिसने प्राप्त ही नहीं किया है या जो होकर जो छूट गया है उसको भी भ्रष्ट कहेंगे। तो जब तक फिर दोबारा प्राप्त नहीं करता है तो भी उसका अनंत काल है, जिसको हम अर्ध पुद्गल परिवर्तन कहते हैं।
आपको कौन से दो अनर्थ प्रतिभाषित हुए भ्रष्ट के? हो सकते हैं, इसीलिए तो हमें शास्त्र वांचन करने में पूरा अटेंशन उपयोग लगाए, आचार्य भगवान कहाँ पर किस शब्द का किस प्रकार से उपयोग कर रहे हैं वो हमें अपने बुद्धि से समझना है।
संसार में ही भ्रमण करता है वो, वहाँ वो पांच परावर्तन रूप भ्रमण मत लो, मगर बहुत काल तक वो संसार में ही लंबे काल तक परिभ्रमण करता रहता है, ये बात लेना यहाँ पर। वो तो दोनों ही अर्थों में घटित होती है, कोई भी अर्थ लो वही बात तो वही की वही है।
नहीं नहीं, उनको यही पूछना है कि भ्रष्ट के यहाँ अलग अलग अर्थ होते हैं, बिल्कुल सही है,
यानी वो दर्शन से रहित है, इतनी बात लेना यहाँ पर, भ्रष्ट है यानी उससे रहित है।
हाँ। हमने बहुत बार देखा ना, धर्म के अर्थ भी अनेक प्रकार से किए गए हैं, वैसे यहाँ
हाँ देखो,
हाँ आपका रहेगा कुमरण से चतुर्गति रूप,
ये हो गया ना ऊपर। हाँ, कुमरण से चतुर्गति रूप संसार में भ्रमण करते हैं, मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाते, इसलिए सम्यक्त्व रहित ज्ञान को, ये भ्रष्टाचार तो रहित किया, सम्यक्त्व रहित ज्ञान को आराधना नाम नहीं देते, यानी वहाँ शास्त्र संबंधी ज्ञान कुछ कर रहा है फिर भी उसका सम्यक्त्व नहीं है, सम्यक्त्व से रहित है तो उससे कोई फायदा नहीं है। अभी प्रवचन पढ़ती हूँ।
अब कोई जीव शास्त्रों को अनेक प्रकार से जानता है, शास्त्र पढ़ पढ़ कर बड़ा पंडित हुआ है, किंतु यदि वह सम्यक दर्शन से भ्रष्ट है तो वह संसार में ही भ्रमता है। सम्यक दर्शन के बिना शास्त्र पठन और पंडिताई ये दोनों व्यर्थ है। इस प्रकार शास्त्र ज्ञान से भी सम्यक दर्शन का अधिकपना ज्ञात होता है। आत्मा ज्ञानानंद स्वभावी है, जिसको उसकी भावना नहीं, श्रद्धा नहीं, किंतु राग की भावना है, वह तो सम्यक्त्व रत्न से भ्रष्ट है। यहाँ भ्रष्ट है यानी उसने प्राप्त ही नहीं किया, ऐसा मान लेना। चैतन्य स्वभाव की भावना रहित और राग की भावना सहित वह जीव सम्यक्त्व रत्न से भ्रष्ट है यानी उसने प्राप्त ही नहीं किया। वस्त्रादि सहित मुनिपना माने ऐसे मार्ग की श्रद्धा तो गृहित मिथ्या श्रद्धा है, वैसे मिथ्या दृष्टि को तो 11 अंग का शास्त्र ज्ञान भी नहीं, वह तो नौ ग्रेवे तक भी नहीं जाता, किंतु बाहर में दिगंबर संप्रदाय को माने, यथार्थ जैन शास्त्र को माने, किंतु जिसे राग की भावना है, ज्ञान स्वभाव का आराधक नहीं किंतु शास्त्रों का ही आराधक है, स्वभाव का विराधक है, ऐसा वह जीव भले ही बहुत शास्त्रों का पाठी हो और महापंडित हो, तथापि वह श्रद्धा से भ्रष्ट है, इस कारण आराधना से रहित है। यहाँ देखो, एक बात हमें बिल्कुल अपने पे लगानी चाहिए, इस तरह से मैं समझूंगा कि हम तो पूछते हैं लोग, अरे इतने साल से आप पढ़ते हो, औरों को पढ़ाते हो, क्या फायदा उसका, ख्याल में? तो यहाँ तो कह रहे ज्ञान चाहे जितना हो जाए, जब श्रद्धान सही हो जाता है तो वही कार्यकारी है। तो अपना हम लेखें कि क्या हमने अभी श्रद्धा में कोई सही बात ली है कि नहीं, तत्वों की बात जो है वो हमने आत्मसात की है कि नहीं, नहीं है। प्रयत्न कर, वही एक मार्ग है, छोड़ देना ये मार्ग थोड़ी है। हमें मान लो कि किसी विशिष्ट दिशा में चलना है, वहां वो गांव बसा है, चलते जाए चलते जाए चलते आए नहीं, अरे तो नहीं नहीं वो ये नहीं आता है, तो उल्टा मार्ग पकड़ेंगे तो आएगा कि नहीं, ख्याल में है ना? ऐसा यहाँ कहते हैं, यहाँ तो वो अन्य बात बता रहे हैं, हम तो इसमें से अपने को कौन सी बात लागू होगी होती है इसका विचार। जिसको मैं ज्ञाता चिदानंद हूँ, ऐसा अंतर स्वभाव का सेवन नहीं, आराधना नहीं और राग की ही आराधना है, वह जीव आराधक नहीं किंतु भ्रष्ट है, अज्ञानी विद्वत्ता के अभिमान में अटककर शास्त्रों के शब्द धारण करके अपने को सम्यक दृष्टि मान लेता है, किंतु चिदानंद स्वभाव क्या है, उस स्वभाव तरफ झुकता नहीं, तो वह जीव ज्ञान का आराधक नहीं किंतु विराधक है, भ्रष्ट। देखो यह संतों ने अंतर का जिगर खोल दिया हृदय खोल दिया, लिखते हैं तो लिख ही दिया है, दोग का पाए क्यों तोड़ा, ये खोड़ो नहीं चाहिए, हृदय रुद्य थोड़ी है, वो उनको अंतर में चिदानंद स्वभाव का अत्यंत प्रेम है, अतः उससे विपरीत मार्ग की प्ररूपना देखकर अंदर में ऐसा भाव हुआ कि अरे हमारे निष्कलंक जैन मार्ग में यह वस्त्रादि सहित मुनिपना मनाते हैं, यह कलंक है। इस प्रकार सत्य मार्ग की प्रीति के कारण भगवान कुंदकुंद आचार्य देव ने यथार्थ वस्तु स्थिति स्पष्ट की है, जगत के समक्ष संतों का हृदय, ये द का ये नीचे वाला हाफ निकाल देना, खोल दिया है, यथार्थ जैन मार्ग जगत में प्रसिद्ध किया है कि वस्त्र का एक धागा भी परिग्रह में हो तो वह मुनि मार्ग जैन दर्शन में नहीं है। जो जीव वस्त्र सहित मुनिपना मनाते हैं वे जैन दर्शन से भ्रष्ट है, ऐसी बात सुनते ही बहुत लोग भड़क उठते हैं, किंतु अब तो यह बात प्रसिद्ध हो गई है, यानी काफी लोग उसको जान रहे, इसलिए प्रसिद्ध, पब्लिक वाली प्रसिद्धि है। ओ, जो जीव अंतर में सम्यक दर्शन नहीं करता और अकेले शास्त्र पठन में या विद्वत्ता में ही रुक गया है, ऐसे आत्मा में धर्म की उत्पत्ति नहीं होती, किंतु वह वहां का वही संसार में ही परिभ्रमण करता है। वह तत्रेव तथेव तथे, क्या लिखा था, तत्रेव तत्रेव लिखा था, तत्रेव तत्रेव तथेव तथेव याद आ रहा, हाँ
वहाँ का वही लिखा है ना,
हो ना, हो ना,
तो वही का वही चाहिए और दोनों वही के ऊपर बिंदी चाहिए। यानी वहीं पर
चिदानंद स्वभाव ही आत्म, चिदानंद स्वभाव ही आत्मा से दोष को जीतना और निर्दोषता प्रकट करना, यह जिनमत कौन ना इनकार करे। ऐसे जिनमत की यानी क्या कहते हैं, चिदानंद स्वभावी आत्मा से दोष को जीतना और निर्दोषता प्रकट करना, यह जिनमत है। इसका कौन इनकार करे ऐसे जिनमत की। ये हूबहू ट्रांसलेशन किया है ना, इसलिए गड़बड़ होती है। जो जीव ऐसे जिनमत की श्रद्धा से भ्रष्ट है, स्वभाव की भावना से भ्रष्ट है और रागादि की भावना है, पर्याय में अल्प ज्ञान के क्षयक्षम की ही भावना है, किंतु चिदानंद स्वभाव की भावना नहीं, वह जीव जिनमत की श्रद्धा से भ्रष्ट है। ऐसा भ्रष्ट जीव शब्द व्याकरण को पढ़े, न्याय पढ़े, छंद अलंकार जाने, संस्कृत प्राकृत व्याकरण आदि जाने, शास्त्र पढ़े और हजारों की सभा को रिझाता हो, तथापि वह जीव सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तप की आराधना से रहित होने के कारण कुमरण करके चार गति रूप संसार में ही परिभ्रमता है। जैसे कौवे कुत्ते कुमरण से मरते हैं, वैसे ही जीव भी सम्यक दर्शन के बिना संसार में कुमरण करके मरता है। अहो
जैसे कौवे कुत्ते कुमरण से मरते हैं, वैसे ही जीव भी समय दर्शन के बिना संसार में कुमरण कर कर के मरता है। अहो एक समय में परिपूर्ण ज्ञान स्वभाव है, यानी जब देखो तब ज्ञान स्वभाव तो परिपूर्ण ही है, उस स्वभाव में से ज्ञान आता है, ऐसी स्वभाव की प्रतीति तो वह करता नहीं और मात्र शास्त्र पठन करके अभिमान में रुक जाता है, वह भ्रष्ट जीव संसार में ही भ्रमता है। वो मानता है कि शास्त्र में से ज्ञान आता है और मैंने इतने शास्त्र पढ़े उसी का अभिमान करता है, परंतु ज्ञान स्वभाव की दृष्टि नहीं होती। ये जो कोई उसे ज्ञान हो रहा है वह भी ज्ञान स्वभाव में से आया हुआ है, परंतु स्वभाव की दृष्टि नहीं करने के कारण वो निमित्ताधीन दृष्टि करके बाहरी भटकता फिरता है। संस्कृत जानी किंतु आत्मा में धर्म के संस्कार नहीं पके तो उसका पढ़ना कुछ काम आवे ऐसा नहीं है। मैंने संस्कृत का तो अभ्यास किया, प्राकृत का अभ्यास किया, परीक्षाएं दी, अभी आजकल चलता है ना पीएचडी भी मिल जाती है, परंतु क्या कहते हैं, आत्मा में धर्म के संस्कार नहीं पके।
आप क्या कहना चाहते हैं, आजकल वो कालीना में चल रहे ना
यूनिवर्सिटी,
कालीना कालीना जो भी है, जो यूनिवर्सिटी लगी है ना, नहीं वहाँ का हम क्या बोलते हैं, डिग्री होल्डर है, डिप्लोमा होल्डर है और उसी में खुश, वैसा वो पुराने जमाने में संस्कृत जानना कुछ विशेष बात थी, लेकिन कह रहे कि धर्म के संस्कार नहीं तो पढ़ना कुछ काम का नहीं है। आगे
भगवान, ज्ञान स्वभाव के संस्कार पाड़ तेरे आत्मा में। संस्कार पाड़ का अर्थ है ज्ञान स्वभाव को अच्छी तरह से जान लो। ये संस्कार करने में बच्चे के ऊपर संस्कार किए उसकी बात नहीं है, कैसा रहना, कैसा उठना, कैसा बैठना, उस संस्कार की बात यहाँ नहीं होती है। ये तो निर्णय करने की बात है और धारणा ज्ञान में लेने की बात है, उसी को संस्कार कहते हैं। तो ज्ञान स्वभाव के संस्कार पाड़ तेरे आत्मा में, ज्ञानानंद स्वभाव की श्रद्धा के संस्कार डाले बिना मात्र शास्त्र ज्ञान से आराधक पना नहीं होता है। ये जो स्वभाव की श्रद्धा है उसके संस्कार ने उसमें बारंबार उसके बारे में निर्णय करके उसी में दृढ़ता से रहना, उसको कहेंगे श्रद्धा संस्कार डाले। आराधना का मूल सम्यक दर्शन ही है, यानी सम्यक दर्शन के बिना ये बाकी आराधना भी नहीं होगी। जो जीव सम्यक दृष्टि है उसको शास्त्र पठन कदाचित अल्प भी हो तथापि वह आराधक है, और जो जीव बहुत शास्त्र पाठी होने पर भी यदि सम्यक दर्शन से भ्रष्ट है, यानी सम्यक दर्शन उसने पाया ही नहीं हो, स्वभाव तरफ की भावना भी नहीं हो, तो वह विराधक है। यानी उसके स्वभाव की रुचि भी नहीं होती है और उसमें बारंबार प्रयत्न भी उसके उस तरफ नहीं होते, तो कहते वो विराधक है। विराधक भाव से चार गतियों में परिभ्रमण कर कुमरण करेगा। अतः हे जीव, सम्यक दर्शन की महिमा जानकर उसकी आराधना कर। आराधना ने कोई पूजा पाठ नहीं होती, आराधना करना यानी उसको प्रकट करना, पर्याय में सम्यक दर्शन प्रकट करना ही उसकी आराधना है। ज्ञानंद स्वभाव की भावना कर, भावना करना यानी उसमें एकाग्र होना है। उस रूप भवन अपनी दृष्टि का ध्येय बदल दे। सम्यक दर्शन बिना तो शास्त्र पठन आदि सब निष्फल है। अंतर में चिदानंद स्वभाव की प्रीति कर और उसी की प्रतीति कर, तो साधक पना होगा। इस प्रकार सम्यक दर्शन ही धर्म का मूल है, सम्यक दर्शन ही सर्वज्ञ भगवान की वास्तविक स्तुति है। क्या बात है, क्योंकि सम्यक दृष्टि के ही भगवान की सच्ची पहचान है। क्योंकि जो भगवान को सही रूप से जान लेता है, निर्णय करता है सर्वज्ञता का, उसको अपने स्वभाव का निर्णय होकर आत्मानुभव हुए बिना नहीं रहता है, तो जिसने वो प्रकट किया है उसी के वास्तव स्तुति भी है। जो जीव राग में एकाग्रता करे और स्वभाव की दृष्टि न करे, यानी राग में अपनापन मान लिया है, अहमपना मान लिया है, और स्वभाव की दृष्टि यानी स्वभाव में अहमपना नहीं स्थापित किया है, तो वह राग की ही स्तुति करता है। यानी उसने वो राग में अपनत्व कर लिया तो उसने राग की स्तुति की, सर्वज्ञ की स्तुति उसके नहीं होती। तो इतनी बड़ी गा गा कर और वाद्य बजा कर स्तुति कर रहा है ना अच्छी, कि सब इतने हजारों लोग मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे हैं, तो कहते वो सर्वज्ञ की स्तुति नहीं है। और ज्ञानानंद स्वरूप सन्मुख होकर उसकी प्रतीति करना, वह सर्वज्ञ की स्तुति है। परंतु वो बाहर में दिखेगी नहीं ना किसी के, तो इसको तो बाहर लोग हम जाने हम कितनी स्तुति कर रहे हैं, इसी में रस है। इसी प्रकार मुनि की गुरु की स्तुति किसे कहना, कि मुनि दशा का वास्तविक स्वरूप पहचान कर अपने स्वरूप में उसका आदर और राग का आदर नहीं, ऐसी प्रतीति करना ही गुरु की सच्ची भक्ति और स्तुति है। उसे ही साधु की और धर्म की शरण ली कहा जाता है। मांगलिक में बोलते हैं ना, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पंडतो धम्मो मंगलम। अरिहंत
धम्मो के ऊपर जो अनुस्वार है वो नहीं चाहिए
ना, धम्मो के ऊपर अनुस्वार नहीं चाहिए। अरिहंत सिद्ध साधु और धर्म उत्तम है, मंगल है और शरणभूत है, यह भी है के ऊपर बिंदी चाहिए। किंतु किसको, जिसने अंतर सन्मुख होकर स्वभाव का आदर किया, उसने ही वास्तव में अरिहंत आदि को मंगल रूप, उत्तम रूप और शरण रूप माना है। ये मुंह से बोलने से वो मंगल और उत्तम नहीं होते हैं, वही पंच परमेष्ठी का भक्त हुआ है। पूर्ण पवित्र ऐसा सिद्ध पद और अरिहंत पद, पूर्ण निर्ग्रंथ ऐसा आचार्य उपाध्याय और साधु पद तथा उनके द्वारा कथित धर्म, इनके स्वरूप की वास्तविक पहचान करे तो अपनी दृष्टि में राग का आदर नहीं करेता। चिदानंद स्वभाव के आश्रय से ही धर्म है। हो, मुनि दशा तो अलौकिक दशा है और वह तो जैन दर्शन की मुद्रा है। उनकी ऐसी दशा हो गई है मानो चलते सिद्ध, ऐसा मुनि दशा का स्वरूप है। जो उसको विपरीत मानता है उसे जैन धर्म की खबर नहीं है, उसकी दृष्टि में भूल है, ज्ञान में भूल है, चारित्र में भूल है, तप में भूल है, वह जीव मार्ग से भ्रष्ट है। ये चौथी गाथा समाप्त होती है यहाँ पर। अब दर्शन पाहुर की पांचवे नंबर की गाथा शुरू होती है। अब कहते हैं कि जो तप भी करते हैं, पहले ज्ञान भी बहुत बहुविध शास्त्रों का ज्ञान किया, अब कहते हैं जो तप भी करते हैं और सम्यक परित होते हैं, यानी सम्यक तो की प्राप्ति हुई नहीं और तप करने लगे, ऐसे जीवों की बात यहाँ पर ली। पहले तो शास्त्रों को पढ़ने वाले लिए, सम्यक तो बिना के शास्त्र पढ़ने वाले, और यहाँ सम्यक तो बिना के व्रत धारण करने वाले, कि जो तप भी करते हैं और सम्यक परित होते हैं, उन्हें स्वरूप का लाभ नहीं होता। पढ़े क्यों गाथा? सम्मत विरहियाणम सुठ वियुगम तवम चरंताणम न लहंति बोहिलाहम अभिवास सकोणि त्व विरहितानम सुष्ठुपि उग्रं तपश्चरन्तोणम् न लभन्ते बोधिलाभम् अपि वर्षसहस्रकोटिभिः यद्यपि करेवे उग्रतपशतसहस्रकोटिवर्षतक् पररत्नत्रयवावेन हि तो यद्यपि उग्र तप करे, कितना शत ने सैकड़ों सहस हजारों करोड़ों वर्षों तक, या शत सहस्र ने सौ हजार यानी मिलियन और आगे करोड़ वर्षों तक उग्र तप करेंगे तो भी यदि वहां बोधि लाभ नहीं है, क्यों? क्योंकि सम्यक्त्व से विरहित है। तो सम्यक्त्व से रहित होकर कितना भी तप क्यों न करे, उनके बोधि लाभ की प्राप्ति नहीं होती, यानी सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती है केवल तप से। अर्थ पढ़ते हैं, जो पुरुष सम्यक्त्व से रहित हैं, वे सुष्ठु, सुष्ठु का अर्थ क्या, भली भांति उग्र तप का आचरण करते हैं। कैसा तप? जैसे जिनेन्द्र भगवान के शास्त्र में वर्णन किया है, ऐसा बाह्य में सब आचरण तो कर रहते हैं, तथापि वे बोधि अर्थात सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में जो अपना स्वरूप है उसका लाभ प्राप्त नहीं करते। यदि हजार कोटि वर्ष तक तप करते हैं तब भी स्वरूप की प्राप्ति नहीं होती। यहाँ गाथा में दो स्थानों पर नम शब्द है, वह प्राकृत में अव्यय है, उसका अर्थ वाक्य का अलंकार है, यानी उसके कुछ खास उसका अर्थ नहीं लेते यहाँ पर। भावार्थ, सम्यक के बिना हजार कोटि वर्ष तप करने पर भी मोक्ष मार्ग की प्राप्ति नहीं होती। यहाँ हजार कोटि कहने का तात्पर्य उतने ही वर्ष नहीं समझना, किंतु काल का बहुत पना बतलाया है। वहां तो छड़ाला में तो लिखा करोड़ों भवों तक तप तपे, ऐसा लिखा है, तो भी वहां तो निर्जरा की बात आई है ना, तो भी अज्ञानी के कर्मों की उतनी, क्योंकि एक एक समय प्रबध खिरेगा एक एक समय में, तो उससे भी अधिक कर्मों की खिरना जो है निर्जरा है, वो ज्ञानी एक क्षण मर भी कर देता, क्योंकि उसके तो असंख्यात गुना निर्जरा चलती है। तो यहाँ के कहते उसको मोक्ष मार्ग की प्राप्ति नहीं होती, यानी ना उनके संवर है ना निर्जरा है, अन्य कोई बात ही नहीं, मोक्ष मार्ग की शुरुआत ही नहीं हुई है। तप मनुष्य पर्याय में ही होता है, इसलिए मनुष्य काल भी थोड़ा है, इसलिए तप का तात्पर्य यह वर्ष भी बहुत कहे हैं।
देखो क्या कह रहे हैं, सम्यक दर्शन के बिना चाहे जितने व्रत तपादि करे तथापि उस जीव को बोधि लाभ यानी सम्यक ज्ञान नहीं होता, स्वरूप का धर्म का लाभ उस जीव को नहीं होता, यह बात अब इस गाथा में कहते हैं। जो पुरुष सम्यक दर्शन से रहित है वह सुट्ठु, सुट्ठु लिखा यहाँ, हाँ सुष्ठु जो हो ना, सुष्ठु अर्थात अच्छी प्रकार से उग्र तप करता हो, तथापि उसको बोधि अर्थात सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में निज स्वरूप का लाभ नहीं होता। करोड़ों वर्ष तप करे तथापि सम्यक दर्शन बिना धर्म का अंश भी नहीं होता। यहाँ कहा है कि सुट्ठ भी, अच्छा उन सुट्ठू चाहिए, अर्थात भले प्रकार दिगंबर मुनि दशा का व्यवहार पालता है, मुनि के योग्य 28 मूल गुण पाले, वस्त्रादि परिग्रह नहीं रखे, प्राण जाए तथापि सदोष आहार न ले, इत्यादि प्रकार तप करे, किंतु यदि अंतर में ज्ञानानंद स्वभाव का भान नहीं करता, चैतन्य सन्मुख दृष्टि नहीं करता, मात्र राग का ही अनुभव करता है, ऐसे मिथ्या दृष्टि जीव को धर्म की प्राप्ति नहीं होती। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की शुद्धता भावलिंग है, ऐसे भावलिंग सहित बाहर में दिगंबर दशा पंच महाव्रतादि वह द्रव्य लिंग है, ऐसे भावलिंगी संत की दशा तो अलौकिक है। अहो धन्य है भावलिंगी श्रवण तुम्हें, तुम्हें मैं नमस्कार करता हूँ, धन्य आपकी दशा, नमोस्तु नमोस्तु। इस प्रकार आगे भाव पाहुड़ में गाथा 129 में कुंद कुंद आचार्य देव स्वयं मुनि को नमस्कार करेंगे। देखो यहाँ भावलिंगी श्रवण का, श्रवण का है, ये श्रवण है वो श्रवण चाहिए, हाँ श्रवण कभी होता है क्या, श्रमण आगे लिखा ना भाई, कुंद कुंद आचार्य देव स्वयं मुनि को नमस्कार करेंगे। अभी वहां मैं पहला समझता था श्रावक क्यों लिखा है, लेकिन फिर देखा ये दिमाग में कुछ बात नहीं बैठी, तो श्रावक को कैसा, मुनियों को श्रावक कैसा कहेंगे, इसलिए दोबारा देखा तो श्रवण निकला। श्रवण तो किसी व्यक्ति का नाम है, ये श्रवण चाहिए। 129वीं गाथा आएगी जब समझ में आएगा, जब तक तो हम रुकते हैं और आएगा तभी देखते हैं। जावाणी के ज्ञान तय सूजे लो कालो, सोवाणी मस्तकनमो सदा देत हो।